Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
कहने लगे एक तो ये, फिर आगे और कहा, सौ वर्णई लांग लाग्रैर विलिखति वसुधा अर्कमूलस्य हेतु। आगे संकेत किया, जैसे किसान लोग होते हैं तो क्या करते हैं, भूमि का आकर्षण करते हैं और सुंदर उसमें फसल उगाते हैं। अब भूमि को निर्मित करते हैं, भूमि को भुरभुरा बनाते हैं, तो किसके द्वारा, हल के द्वारा। अब वो हल किसी के पास लोहे का हल होता है, किसी के पास काठ का होता है, लेकिन फाल लोहे का होता है उसमें। लेकिन यहां क्या कह रहे, सौ वर्णई, आपके पास हल है, आप भी एक किसान हो, क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात समझ लीजिए, तो आपके पास भी हल है, लेकिन आपको जो हल दिया है वो कैसा है। कहने लगे उसमें जो फाल है वो सुवर्ण का है, ऐसे पवित्र वस्तु सुवर्ण, ऐसे सुवर्ण का जो है फाल दिया गया है, और किस लिए, का भूमि को बनाने के लिए, जिसमें सुंदर फसल पैदा हो। तो कहने लगे वो तो हमको दिया और उसका हम प्रयोग भी कर रहे हैं, भूमि को जोत भी रहे हैं, लेकिन जोत करके भूमि तैयार करके हम उसमें वपन क्या कर रहे हैं, बीज क्या लगा रहे हैं, फसल क्या लगा रहे हैं। तो क्या कहा, विलिखति वसुधा अर्कमूलस्य हेतु, हम उसमें आग का बीज बो रहे हैं। क्या बो रहे हैं, आग का, और आग का बीज आप जानते हो तो समझते चलो। यहां जो कहा पहले, स्थाल्याम वैदूर्यमय्याम पचत च लसुनम इन्द्र नैश्चंद्रोत्थई, हमको उस परमात्मा ने कृपा करके सर्वत्र जो है लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम, इसकी दुर्लभता की चर्चा की गई, और ये इतना हीरे जवाहर की कीमत के समान कीमती है, क्योंकि हम इससे चाहे वही हम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की स्वस्थता प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं, वो विचार करने का ये उत्तम साधन है। लेकिन हम कर क्या रहे, तो क्या संकेत किया, कहा लहसुन पका रहे। लहसुन का मतलब क्या, लहसुन यद्यपि गुड़ भी उसमें बहुत है, इसलिए कैप्सूल भी निकाल दी, लेकिन एक उसमें बड़ा दुर्गुण है। वो दुर्गुण क्या है, जिस पात्र में आप लहसुन को रख दो, फिर उसको उस पात्र से निकाल दो और उस पात्र को धो दो, लेकिन फिर भी उस पात्र में से बदबू जाती, वो बदबू आती, उसके संस्कार जल्दी निवृत्त होते नहीं। ठीक इसी प्रकार से ये लहसुन क्या है, लहसुन कोई और नहीं, यहां संकेत वर्तनी करते हैं कि अधर्म, अन्याय, विपरीत दिशा में जाना है, असत कर्मों को करना, यही क्या है, यही लहसुन। शरीर मिला है हमें शुभ कर्मों को करने के लिए, और शुभ कर्म के द्वारा हमें शुभ गति प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, स्वस्वरूप को जानने के लिए, लेकिन उस शरीर से हम क्या कर रहे हैं। कहने लगे अधर्म है? अधर्म के द्वारा हम सुख चाहते, अन्याय के द्वारा हम सुख चाहते, तो इसलिए कहा। और वो अधर्म क्या करता, जैसे उसकी लहसुन की बदबू नहीं जाती, वैसे ही इस अधर्म के संस्कार भी जल्दी पीछा छोड़ते नहीं। वो क्या करते हैं, वो अधर्म के संस्कार पुनः पुनः हमें इसी संसार के अंतर्गत जो है लगाए रहे, वो जल्दी समाप्त होते नहीं। इसलिए कहने लगे ये तो करते हो, और ये जब कर भी रहे हो तो कैसे करते हो, अधर्म उसमें पका रहे हो, उसका भक्षण भी कर रहे हो, लेकिन अधर्म पकाने में प्रयोग किसका कर रहे हो। तो चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी का मतलब क्या है, जो पूर्व में हमने शुभ कर्म किए, पूर्व में हमने पुण्य कर्म किए, उन्हीं का तो भोग कर रहे हो, उन्हीं का तो भोग हो रहा है, तो उन्हीं को हम जला करके नष्ट कर रहे हैं, उन्हीं को परिसमापन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, चंदन की लकड़ियों को। तो पूर्व में हमने जो शुभ कर्म किए, पुण्यात्मक कर्म किए, उनका तो हम भोग कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, और जो है आगे क्या कर रहे हैं, तो कहा अशुभ कर्म कर। तो शरीर किस लिए प्राप्त हुआ, तो उसके लक्ष्य को न समझ करके और हम ये यद कर रहे हैं। और कहने लगे इतना ही नहीं, अब इसमें जो है इस सुंदर भूमि बना करके और सुंदर जो है फसल तैयार, सुंदर फल की प्राप्ति करने के लिए और साधन मिला है, तो ये मन ही जो है वो क्या है, मन यद्यपि स्वर्ण के समान पवित्र है। जैसे स्वर्ण पवित्र होता है वैसे ही हमारा मन भी, हम मन से सुंदर संकल्प कर सकते हैं, है? तन में मना शिव संकल्प मस्तु, लेकिन हम वो शिव संकल्प न करके और अशिव संकल्प ही करते रहे तो अशिव ही संकल्प होते हैं। भगवान परमात्मा का संकल्प कहां बन पाता, सारे संकल्प हमारे जो बनते हैं वो क्या है, संसार के ही बनते हैं। और संसार क्या है, तो संसार तो अशुभ ही रूप है, सावा असत रूप है, विवर्त रूप है, तो वो संकल्प तो हमारे अंदर होते, एक क्षण के लिए परमात्मा का संकल्प आता भी है लेकिन तुरंत जो है विकल्प खड़े हो जाते हैं और संसार के ही विकल्प हमारे सामने। तो इसलिए कहा कि मन मिला है हमें किसके लिए, इस हृदय रूपी भूमि को जोत करके, मन विचार के द्वारा, और विचार के द्वारा विचार ही जोतना है, विचार के द्वारा उसे योग्य बनाना, उसे जो है पात्रता प्रदान करना, और फिर उसमें जो है क्या फल देना है, क्या बीज बोना है, तो उसमें जो है अपने स्वरूप का बोध है, अहम ब्रह्मास्मि आदि सत्य का संकल्प, ये जो है उसमें बीज डालना। लेकिन और वो बीज डालोगे तो सत्य क्या सिखाता, सर्वत्र सौहार्द, सर्वत्र प्रेम, ये सब सत्य का धर्म है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके विपरीत। आग क्या करता है, आग जो है आग का दूध आपके हाथ में लग जाए और उसका हाथ आपकी आंख में लग जाए तो क्या कर देता है, आंख को ही समाप्त कर देता है, आपकी दृष्टि को ही समाप्त कर देता है। तो जिसमें जो है हमें सुंदर जो है फल बोना चाहिए, सुंदर बीज बोना चाहिए, वो न बो करके हम क्या बो रहे, केसर बोना चाहिए, कस्तूरी बोना चाहिए, वो न बो करके क्या बो रहे, कहा आग। और आग क्या करता, तो दृष्टि को ही ले बैठता, तो वो क्या है, ईर्षा। सर्वत्र हमारा वैमनस्य ईर्षा के बीज हम उस अंतःकरण में डाल रहे हैं, उसमें जोत करके और वो डाल रहे हैं, जिसका परिणाम क्या होता, हमारा विवेक ही समाप्त, विवेक ही नहीं रह जाता, वो हमारी विवेक ईर्षा हमारी विवेक दृष्टि को ही समाप्त कर देती। और कहने लगे इतना ही नहीं, और भी प्राप्त हुआ, कितना प्रसाद मिला, चित्त्वा कर्पूर खंडान वृत्तमिह कुरते कोद्रवाणम समन्ता। बढ़िया भीमसेनी कपूर है, जिसको भून करके आटे में डाल दो तो आटा कैसा हो जाता, सुगंधित हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। जिसको पहले लोग प्रसाद में बनाते थे, सत्यनारायण की कथा करते तो उस कपूर आदि को डाल करके आटा को भून के ही प्रसाद बनाते, और उसको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो बहुत स्वादिष्ट हो जाता। तो जिस कर्पूर के द्वारा वह आटा भी सुगंधित और स्वादपूर्ण हो जाता, ऐसा हमें जो है मिला हुआ है कर्पूर के समान क्या, बुद्धि। बुद्धि भी हमारी कर्पूर के समान सुख देने वाली पवित्र है। तो चित्त्वा कर्पूर खंडन, वो बुद्धि तो हमारे पास है लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम कहां कर रहे, उस बुद्धि को हम किस में लगा रहे, तो कहले कोद्रवाणम समन्तात, अत्यंत तुच्छ जो अनाज जो है, है उस अनाज की सुरक्षा के लिए कीड़े उसमें न पड़े इसलिए जो है उसमें हम उसका प्रयोग कर रहे। अब संकेत किया, चित्त्वा कर्पूर खंडान वृत्तिमिह कुरते कोद्रवाणम समन्ता। अब वृत्ति वहां क्या बनानी चाहिए, क्या वृत्ति करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे। वह बुद्धि हमें मिली है किसके लिए, अभेद ज्ञान के लिए। अभेद ज्ञान की हम प्राप्ति करें, हमारे जीवन में अभेदत्व आए, समाज में भी हम एकता को प्राप्त हों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस बुद्धि का प्रयोग किसमें कर रहे हैं, कि कितना अधिक से अधिक हम वेद डाल सकें। वेद डालना बड़ा सरल है लेकिन अभेद करना बड़ा कठिन। तो बुद्धि हमें प्राप्त हुई है अभेदक ज्ञान के लिए, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम किसमें कर रहे हैं? कहा वेदक ज्ञान माने खंड करना, खंडों में अखंडता को न करके हम जो है खंड करते। और आप जानते हो एक दृष्टांत महात्मा लोग देते ना, भेद कितनी जल्दी पड़ जाता। कहा एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी में भेद डालने के लिए, दोनों पत्नी दंपति बड़े सुखपूर्वक रह रहे लेकिन उसको ईर्षा हो गई, तो उसने कहा इसमें भेद डाल दें। तो उसने कहा भेद डालने के लिए क्या किया? अब देखो बुद्धि का प्रयोग, इसमें बुद्धि सफल हो जाती। लेकिन जहां दो झगड़ रहे हो, जहां दो में विपरीतता हो, वहां एक करना ये बड़ा कठिन। तो उसने कहा जाकर के, अरे पत्नी से कहा तेरा पति तो लूणिया है, नमकीन है, और उससे कहा जाकर के तेरी पत्नी तो सर्पिणी है। और ऐसा जब कहा, उसने कहा नहीं नहीं, कहा नहीं तो प्रयोग करके देख ले। और उसने प्रयोग किया तो पति भी समझ गया कि हाँ ये सर्पिणी सर्पिणी भी चाटती तो ये भी चाट रही, चाट के देख रही, और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। तो भेद डालना, हम थोड़ा सा संकेत कर दें तो भेद तो तुरंत पड़ जाता है लेकिन एकत्व करना बड़ा कठिन है। ऐसे ही यहां पर भी अभेद ज्ञान के लिए आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जो अभेद ज्ञान है, इस अभेद ज्ञान को करने के लिए हमें बुद्धि मिली है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग हम किसमें लगा रहे हैं? भेद ज्ञान। कितना भी हम चर्चा करते हैं लेकिन फिर भी बुद्धि दौड़ के कहां जाती? भेद ज्ञान में ही जाती। अभेद ज्ञान को जो है ग्रहण करना बड़ा कठिन हो जाता। और ये संकेत करते हुए अंत में उपसंहार करते हुए वर्तरि ने लिखा प्राप्त इमाम कर्म भूमि, संकेत कर दिया ये कर्म भूमि। यद्यपि कर्म की निंदा भी की गई लेकिन यहां संकेत करते हैं प्राप्त इमाम कर्म भूमि, ये शरीर क्या है? कहने लगे ये कर्म भूमि है। ये क्या है? कर्म भूमि। जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाए। और इस कर्म भूमि में साधन भी तुम्हें दिए हैं बहुत सुंदर, बुद्धि मन आदि, जिनके द्वारा तुम उत्तम से उत्तम वस्तु की प्राप्ति कर सकते हो। चाहो तो वेद ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो और न चाहो तो है वेद में ही वर्त करके और जीवन को जो है, सहांद में ला जा सकते हो। तो ये संकेत किया तो प्राप्य माम कर्म भूमि न चरति, इस ऐसी कर्म भूमि को प्राप्त करके भी और आचरण करने में असमर्थ रहता है, आचरण नहीं कर पाता है, प्रयास करते हुए भी और फिसल जाता है। प्रयास करता है लेकिन प्रयास करते हुए भी सफल नहीं हो पाता है। तो क्या है? कहने लगे यस तपो मंद भाग्य, जीवन में तप नहीं है, यही उसकी मंदता है। कहा तप क्या है? तो तप के लिए कहा मनश्चेन्द्रियाणाम ऐकाग्र्यम इति तपः, शरीर को धूप में सुखाने का नाम तप नहीं, शरीर का कर्षण करना तप नहीं। तब तप क्या है? भगवत पादाचार्य आचार्य शंकर ने तप का लक्षण किया। कहने लगी तप क्या है? तो कहने लगी मनश्चेन्द्रियाणाम ऐकाग्र्यम इति तपः, हमारा मन जो हमें ये साधन प्राप्त हुए और इंद्रिय आदि, ये हमारा अंतःकरण और हमारी इंद्रियां कहां लगे? तो कहने लगे जो अग्र है, उस अग्र में मन और इंद्रियों को जो एक है और अग्र, एक एकाग्रम एक है और अग्र है, उसमें मन को लगाने का नाम ही है क्या? तप। और यदि ये तप हो जाता है तो तप ही क्या करता है? कहने लगे हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता, हमारी बुद्धि को शुद्ध करता। और ये जब हम तप करते हैं उसमें जब लगाते हैं तो उसके उपाय क्या है? तो उसके लिए संकेत किया कि वो एक क्या है, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए ही जो है ये उपदेश आदि की प्रक्रिया है, आचार्य आदि की प्रक्रिया है, शास्त्र आदि उसके साधन है। यदि उसे हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम मार्ग पर चल पड़ते। एक ट्रैफिक लाल बत्ती है, हरी बत्ती, और वहां ट्रैफिक का सिपाही भी खड़ा, बोर्ड भी लगा, तीर भी बना दिया, क्या कहा कि अमुक मार्ग अमुक जगह जा रहा है ना, और अमुक मार्ग अमुक जगह जा रहा है, आपने बोर्ड पढ़ लिया, उसके तीर के संकेत को देख लिया, और उसके अनुसार यदि आप मार्ग का मार्गन करते हो तो क्या पहुंचते हो, अपने लक्ष्य पर। लेकिन वहीं पर एक बात और, क्या कहा, वो बत्तियां लगी लाल और हरी, वो क्या संकेत करती, मार्ग तो है लेकिन अभी रुक जाओ, और नहीं तो वो सिपाही खड़ा हुआ है वो क्या करता है, वो इधर करेगा, इधर करेगा, ये करेगा, इधर जाओ, रोकेगा, तो क्या करता, विधि और निषेध कर, कब तुम्हें चलना है कब नहीं चलना। मार्ग तो सही है लेकिन मार्ग पर चलने के लिए भी वहां पर जो है विधि और निषेध करती है। ठीक इसी प्रकार से यदि उसको आप, उस नियम को आप जो है स्वीकार करते हो तो आप जो है निर्विघ्न है रूप में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो, और यदि आप उसको स्वीकार नहीं करते हो और चल पड़ते हो तो कुछ नहीं होगा, तो चालान तो हो ही जाएगा है, कुछ भी नहीं होगा तो चालान तो हो, तो दंड तो मिलेगा, और जो है कार्य में कहीं बाधा भी आ सकती है, आपने छोड़ दिया उधर से दूसरा आ गया तो ये सब होगा। इसी प्रकार से यहां संसार के अंतर्गत ये आचार्य को भी अर्थात उस ट्रैफिक के सिपाही की भी बात को मानना चाहिए, किस लिए, जीवन को सुचारू रूप से चल। ऐसे ही यहां पर वो ट्रैफिक का सिपाही यदि खड़ा हो पिए शराब तो भी क्या होगा, तो भी बात नहीं बनेगी, तो दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। तो यहां भी संकेत वही करते हैं कि आचार की प्रसादता भी होनी चाहिए, ईश्वर की कृपा भी होनी चाहिए, शास्त्र की कृपा भी होनी चाहिए, और अपनी कृपा भी, जब चारों कृपाएं मिल जाती हैं तो हमारा काम ठीक, तो ये संकेत किया। अब यहां जो है ऋषि कहता है आचार प्रसादता, आचार की तो प्रसन्नता है, आचार का प्रसाद है, आचार की कृपा है, क्योंकि इतने गूढ़तम, इतने रहस्यात्मक उस सार को उन्होंने जो है हमारे लिए है एक सरलीकरण करके, शोध करके और उन्होंने हमारे लिए रखा है, तो ये उनका क्या है, प्रसाद। इसलिए संकेत किया कि उन्होंने भाष्य करके इस श्रुति पर, उपनिषद पर हमारे ऊपर जो प्रसाद में दिया है, अपनी कृपा जो की है, उनके प्रसाद से ही अब हम क्या कर रहे हैं। कहा उन्होंने दे तो दिया है तो सार, लेकिन सार में से भी ग्रहण करना, उस सार को कैसे ग्रहण किया जाए, सरलता से कैसे प्राप्त हो, इसके लिए जो है हम उपाय कर रहे हैं। सार तो मिल जाए लेकिन सार को जब तक ग्रहण नहीं कर पाओगे तब तक भी वो सार क्या करेगा है? सुंदर घी मिल गया, और घी नहीं, इस सार को तत्व शब्द से कहा, श्वेता सेतु उपनिषद में वहां मंड शब्द आया, कहा मंड निव, वो सार कैसा है, कहा मंड की तरह, और मंड क्या होता, वहां पर तत्व शब्द से, सार शब्द से संकेत किया, वहां उद्धरण दिया कि मंड विव, मंड की तरह से, ये श्वेता सेतु उपनिषद में ऐसा है, स्वाध्याय भी आप लोग करते रहे तो उसमें आया है कि मंड विव, वो मंड क्या है, तो ये कोई गहन बातें नहीं, आप मंड किसे कहते हैं तो वहां समझना है कि शब्द का अर्थ क्या, यही आचार्य अत्यामियों की कृपा हो। वहां पर जो है जैसे आप बढ़िया दूध गौ का निकलवा के लाई, आपने गर्म किया, गर्म की करे ठंडा किया, जामन लगा दिया, दही बन गया, दही करके उसे बिलो लिया, बिलो करके मक्खन निकाल लिया, मक्खन को गर्म किया, घी बन गया, और फिर आप जब घी को गर्म करते हो और गर्म करके उस घी को ठंडाने रख देते हो तो क्या होता है, आप कभी ध्यान से देखें, आपका जो शुद्ध घी है और गर्म आपने करके रखा, जेजू ठंडाता जाता, तो जैसे दूध में एक मोटी परत ऊपर आ जाती है जिसे मलाई कहते हो, वैसे ही उस शुद्ध घी में इतनी क्रिया के होने के बाद और उस घी पर एक बारीक परत आ जाती, उस घी पर जो बारीक परत आती है उस परत का ही नाम क्या है, मंड है, और कोई मंड नहीं। और वो जो है वो कब निकला, कितने प्रयास के बाद वो निकला और कितना अंश में निकला, थोड़े अंश, तो वो है उसका सार, वो है उसका तत्व, और उस सार को निकालने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, लेकिन वो जो है घी में भी स्वाद को देने वाला वो मंड ही है, दूध में भी स्वाद को देने वाला भी वो मंड ही है, और जो है इसी प्रकार से दही में भी स्वाद देने वाला वो मंड था, मक्खन में भी स्वाद देने वाला वो सब में व्याप्त था। लेकिन निकला कब जाकर के, कितने परिश्रम के, तो उसी के स्वाद से वो सारा दूध दही आदि स्वादिष्ट था। इसी प्रकार से ये सारा का सारा संसार जो हमें प्रेम का आस्पद लग रहा है, और प्रेम कहां होता, संसार में जितने पदार्थ में स्वाद से युक्त लगते हैं उनसे तो प्रेम होता, और जिनमें स्वाद न हो तो क्या उनमें प्रेम लगेगा। तो जहां सुख समझते हो, जहां स्वाद समझते हो, वहीं तुम्हारा प्रेम होता है। तो अब स्वाद किसको बल को लेकर के, तो कहा तत्व को लेकर के। ठीक इसी प्रकार से जहां पर भी आपको सुखानुभूति होती है, इसलिए विषयानंद को भी पंचदशी में वर्णन किया, वहां भी वो भी आभास जो है वो किसका है, कहने लगे उसी का। यम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदम यतः, वो जो आत्मा है वही परम प्रेमास्पद का विषय है, वही सार रूप है, और ऐसे उसके लेकर के ही सर्वत्र जो है स्वाद आनंद सुखाद की प्रतीति होती है। लेकिन उसको निकाले कैसे, वो आएगा कैसे, तब उसके लिए कहा आचार्य प्रसादतः, आचार्य की प्रसन्नता से, आचार्य की कृपा हो, और आचार्य की कृपा ही नहीं अपनी ही कृपा हो, इसलिए कहा है न चरति यस तपो मंद भाग्यात, हमको भी अपना तप करना, क्योंकि ये कर्म भूमि हमें जो प्राप्त हुई है, ये साधन हमें जो प्राप्त हुआ है, उस साधन का सदुपयोग हमें भी करना। और जब इस प्रकार से साधन का हम सदुपयोग करते हैं तो आचार की कृपा से वो सार तत्व हमारे सामने आता है, और जब सार तत्व सामने आता है तो हम उसे ग्रहण करने में फिर समर्थ भी होते हैं, और समर्थ होते हैं तो सर्वत्र हमारे लिए भय की निवृत्ति, दुखों की निवृत्ति हो जाती। इसलिए यहां पर भी संकेत यही करते कि जो है ये तैतीरिक उपनिषद का जो सार है, इसका जो वास्तविक तात्पर्य है, उस तात्पर्य को यहां पर जो है बतलाने जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कैसे, तो आचार्य के प्रसाद से। और एक ध्यान और रखना, ये सब कहा कि शास्त्र में तो लोग हम सुन लेते हैं वेदांत आदि के, शरीर को भी मिथ्या का, संसार को भी मिथ्या का, तो इनकी क्या उपयोगिता, इनसे तो दूर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इनकी उपयोगिता है, सर्वथा उपयोगिता नहीं, उपयोगिता है कब तक है, बढ़िया हापुस आम है 5000 की पेटी लेके आए, और जब लेके आए तो उसका रस निकाल लिया, अब रस निकाल लिया तो क्या फिर ये कहते हो रस तो आप अपने फ्रिज में रख लेते या उसे ग्रहण कर लेते, लेकिन जो छिलके और गुठली हैं उनको क्या करते हो, है फेंक देते हो, क्या कहते हो, तब ये नहीं कहते वो भी तो 5000 में ही थे, उनकी भी उस समय कीमत 5000 में थी, लेकिन जब उसमें से सार निकाल लिया तब वो व्यर्थ होते हैं, और जब तक उसमें से वह सार नहीं निकला तब तक उनकी भी उपयोगिता है, क्योंकि सार को सुरक्षित रखने में तब तक वो भी काम, और उसी से सार निकलेगा, बगैर उसके सार निकल भी नहीं सकता। ऐसे ही है इस शरीर आदि भी तब तक जो है सार्थक है जब तक आपने तात्पर्य को निकाला नहीं, और जब इसमें से जो तात्पर्य जब निकल जाता है उस समय ये शरीर भी निस्सार हो जाता। जैसे आपको गुठली में आसक्ति नहीं रह जाती, छिलके में आसक्ति नहीं रह जाती, उस समय संसार से और शरीर आदि से भी आसक्ति निवृत्त हो जाती है, ऐसा संकेत है। तो ऐसे सार की तरफ संकेत किया गया, अब आगे चर्चा कल करेंगे।